सलाम जी सारिआं नूं। होर सुनाओ, सब ठीक हो? चलो, खुदावंद दी तारीफ होवे जी। इस तो पहले कि असीं खुदा दे कलाम नूं सीखना शुरू करिए, आओ असीं सारे खुदा दे हजूर चुकीए ते उस खुदा कोलों जिहड़ा हिकमत, दनाई ते कुवत ते ताकत ते हर मुश्किलात दे विच साडे नाल रहिंदा ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਫਿਕਰੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆਜ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਬਹ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਂ ਔਰ ਯੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਕਸਦ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੂਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕਾਮ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅੱਜ ਹਮ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਮੇਂ ਸੇ ਸੀਖੇਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਜੋ ਹਮ ਸਭ ਕਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਸਮਝਨੇ ਕੀ, ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਔਰ ਸੋਚਨੇ ਕੀ ਕੁਵਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਯੇ ਦੁਆ ਮਾਂਗਤੇ ਹੈਂ, ਆਮੇਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਹਮ ਨਏ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਮੇਂ ਇਫਸੀਓ ਕੇ ਨਾਮ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਾ ਖਤ ਜੋ ਪਾਲੂਸ ਨੇ ਲਿਖਾ ਉਸ ਮੇਂ ਸੇ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਦੁਹਰਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਮ ਆਇਤ ਬਾ ਆਇਤ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਮਝ ਸਕੇਂ। ਯੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੋ ਸਮਝੇਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੇ ਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਯੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀ ਫੈਸਲ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਰਜੇਸ਼ ਔਰ ਬਹਿਨ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੂਸਰੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ। ਖੁਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਯੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਖੁਦਾ ਹਮੇ ਸੇ ਹਰ ਏਕ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਿਕਾਲੇ ਇਫਸੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਸਕੀ 15ਵੀਂ ਆਏ ਸੇ ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਜੈਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂ ਉਨਕੋ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਨਜ਼ਮ ਯਾ ਹਮਦ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਹਮਦ ਯਾ ਨਜ਼ ਜੋ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮਦ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਇਨ ਆਯਾਤ ਕੋ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਹੋ, ਜਬ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਂ ਹੋ, ਜਬ ਆਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹਮਲੋਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਅਬਲੀਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਤੋ ਆਪ ਖੁਦਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇਂ, ਆਪ ਉਸ ਆਇਤ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹੀਂ ਪਰ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਮੇਂ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਕੇ ਸਾਇਆ ਕੀ ਵਾਦੀ ਮੇਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਸਭ ਕਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਸੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਆਤਫ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 121 ਯਾਦ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਜਬ ਉਸਸੇ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰ ਤੋ ਵੋ ਜ਼ਬੂਰ 121 ਕੋ ਸੁਨਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੋ ਜ਼ਬੂਰ 121 ਕਿਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹੈ। ਯਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਕੁਮਕ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਵਤ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏਗੀ। 115वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आपको याद दिलाया जाए कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमने सीखा है और क्या सीखेंगे, और एक सीखने के दौरान कौन सी मुश्किलात, परेशानियां और रुकावटों का सामना आपको होगा। आप आम लोग नहीं हैं, आप खुदा के बहुत खास लोग हो, जिसके लिए खुदा ने खुद अपने बेटे को भेजा है कि वो सलीब पर उस तन्हाई को, उस अलहदगी को, उस मुसीबत को, उस दुख को, उस परेशानी को, अपने मुंह पर थूके जाने को, मारे जाने को, पिटवाए जाने को, हर तरह की मुश्किल का सामना करे। क्यों? क्योंकि आप बहुत अहम हैं, क्योंकि खुदा हम सब से मोहब्बत रखता है। आप जो माँ बाप हैं, जब आपके बच्चे को कुछ होता है या बीमारी या कोई मुश्किल या किसी तरह की परेशानी का सामना होता है या बीमारी का, तो आप जो माँ बाप हैं समझ सकते हैं कि अपने बच्चों के दर्द के लिए आप क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? कुदरती तौर पर खुदा ने हमारे अंदर रखी है बात। मिसाल के तौर पर अंकल जवेद, अगर राजू को कुछ हो जाता है, बीमार या कोई जख्म लग जाता है, तो अंकल जवेद का दिल उसके लिए तड़प उठेगा और अंकल जवेद हर तरह की हद पार करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि राजू को आराम आ जाए या उसका दुख या तकलीफ दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि राजू उसके बा अंकल जवेद की नजर में क्या है? अहम है, खास है। इसी तरह खुदा की नजर में हम सब खास हैं, अहम हैं, बहुत ही हमारी क्या है, खूबसूरत हैसियत है खुदा में। इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, इस दुनिया के इन हालातों में, परेशानियों में, मुश्किलात में, हम बहुत दफा कहेंगे कि खुदा हमारी तरफ से खामोश हो गया, हमारा खुदा कहाँ पर है जो हमारी दुआ को नहीं सुन रहा, हमारा खुदा कहाँ पर है जो हमें दुख में देख नहीं देखते हुए खामोश बैठा हुआ है। बहुत दफा ऐसे हालात पैदा होंगे और खुदा ऐसे हालात पैदा होने देगा ताकि हम बजाय खुदा की तरफ से मुंह फेरने के लिए खुदा की तरफ फिरें। तो 15वीं आयत में पालूस रसूल कहता है, इफिसस की कलीसिया को लिखते हुए, इफिसियों के ईमानदारों को लिखते हुए, उनको उनकी हैसियत, खुदा में उनकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत उनके साथ याद दिलाते हुए उनको याद दिलाता है और कहता है, 15वीं आयत को गौर से सुने सब बच्चे, बहन भाई, बुजुर्ग बच्चे, इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान है खुदावंद यस जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यस्सु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर। पालूस के पास वजह है, पालूस के पास सबब है और वसीला, वजह है कि वो किस बुनियाद पर खुदा के हजूर उन सब को याद रखता है, उन सब के लिए शुक्रगुजारी करता है। और वो वजह क्या है? उनका ईमान। और 16वीं आयत में कहता है, तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपकी याद दहानी के लिए आप सबसे सवाल है, पालूस रसूल ने ये जब खत लिखा वो कहां पर था? कैद में। कहां पर था? कैद में। सब मेरे साथ कहें, कैद खाना में। कैद खाना में। क्यों? पालूस रसूल यहां पर उनकी बाबत शुक्रगुजारी कर रहा है। पालूस यहाँ पर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है, पालूस यहाँ पर दुआ कर रहा है, पालूस यहाँ पर परस्तिश कर रहा है, इबादत कर रहा है। इन दो लफ्जों को जब हम देखते हैं, वो कहता है तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो कहाँ पर है, ताकि आप इस बात से वाकिफ हों कि पालूस रसूल होटल में नहीं बैठा हुआ, पालूस रसूल झील पर बैठा हुआ नारियल पानी नहीं पी रहा, पालूस रसूल किसी सुकून की जगह पर नहीं, बल्कि वो रूमी कैद खाना में है। यानी कि वो मुश्किल में है, उसके साथ हर 4 घंटे बाद, गालबन 4 और 6 घंटे बाद जो सिपाही बदला जाता था, उसके साथ उसको हथकड़ी लगाई जाती थी और वो उसके साथ रहता था। सो पालूस यहाँ पर किसी, क्या कह सकते हैं कि अच्छी जगह नहीं बल्कि कैद खाना में है। लेकिन जो तवज्जो आपकी दुलाना चाहता हूँ कैद खाना के लिए, इसी खत में जो हमसे अगर कोई पूछ ले कि आप कहते हैं कि पालूस कैद खाना में है, उसका सबूत क्या है? जब हम देखते हैं इफ्सियों 3 बाब उसकी पहली आयत को, तो वहां पर पालूस रसूल कहता है, मसीह यसू का कैदी हूं। दूसरी आयत का पहली आयत का दूसरा हिस्सा है ये। वो कहता है मैं खुशखबरी के बायस मसीह यसू का कैदी हूं। 3 बाप 1 आयत, फिर 4 बाप उसकी 1 आयत में फिर कहता है मैं जो खुदावंद यसू में कैदी हूं। फिर 6 बाप उसकी 20वीं आयत में पालूस रसूल कहता है जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ एलची हूं। तो ये सबूत है कि पालूस रसूल कैद खाना में है। 3 हवालाजात इस बात को बयान करते हैं, इफ़्सियों 3 बाप उसकी 1 आयत, इफ़्सियों 4 बाप उसकी 1 आयत, इफ़्सियों 6 बाप उसकी 20वीं आयत। आप सोचते होंगे कि क्यों पादरी साहब ये हमें बता रहे हैं, ताकि आपको जवाब देना आ जाए अगर आपसे कोई आपका बेटा या बेटी या बच्चा या पड़ोसी पूछे। तो पालूस रसूल कहता है 16वीं आयत में, तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। तो पालूस रसूल कैद में है, उससे सिपाहियों का सामना है, उससे मारपीट का भी सामना है, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं पालूस रसूल ने बहुत ज्यादा मारपीट का सामना किया। 50 कोड़े उसे 5 दफा लगाए गए। इसका आपको बयान मिल सकता है पहला करंथियों उसका 11वां बाप, वहां पर आपको इसका जिक्र मिल सकता है कि पालूस रसूल कैद खानों में कितना ज्यादा रहा, कोड़े खाने में सबसे ज्यादा, मौत के खतरों में सबसे ज्यादा रहा। और कहता है मैंने यहूदियों से 5 बार 1 कम 40 40 कोड़े खाए। दूसरा करंथियों 11 बाप उसकी 24वीं आयत, फिर कहता है 3 बार बैंत लगाए गए, 1 बार संसार किया गया, यानी कि पत्थरों से मारा गया, पत्थर लोगों ने उस पर मारे, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा और 1 रात दिन समंदर में लटका। तो पालूस रसूल ने बहुत से दुख उठाए, लेकिन यहाँ पर उसका जो अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे हैं कलीसिया के लिए, वो क्या है? तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। दूसरे लफ्जों में कोई भी ऐसी मुसीबत, रुकावट, मसला, परेशानी, बीमारी, हालात पालूस को रोकते नहीं कि वो शुक्रगुजारी करना बंद कर दे। मुझे याद है कि एक पादरी साहब ने मुझे इस कहानी के बारे में बताया कि एक पादरी साहब को उन्होंने नौकरी पर रखना था और उनको भेजना था किसी दूसरे शहर में। तो उन्होंने क्या किया, इश्तहार दिया कि हमें पादरी साहब की जरूरत है जो दूसरे शहर में जाके वहां पर मनादी करे, उसकी ये तनख्वाह होगी, उसे ये कुछ दिया जाएगा। तो वहां पर कम से कम 200 से ज्यादा पादरी साहब इकट्ठे हो गए। तो जब उनके लिए उनका इंटरव्यू की बाबत बातचीत चल रही थी, बहुत से पादरी जो थे वो बाहर बैठे रहे। तो जो ऑफिस के लोग थे, पादरी साहब थे, उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया। सुबह से 7 बजे से लेकर शाम तक लोग बैठे रहे, उन्होंने किसी को भी दावत नहीं दी कि अंदर आए। तो जब ऐसा हुआ तो पादरी साहबान घर को जाना शुरू हो गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहले 10 गए, फिर 20 गए, फिर 50 गए, और वहां पर सिर्फ क्या हुआ, एक पादरी रह गया और बारिश होने शुरू हो गई। खतरनाक बारिश आ गई, बिजलियां गड़कना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन वो पादरी उस टेबल पर बैठा रहा इस उम्मीद पर कि मुझे आवाज दी जाएगी, मैं जाऊंगा और खिदमत करूंगा। ये कहानी शेयर करने का, बताने का मकसद क्या है कि वो तमाम पादरी साहब आए, उन्होंने देखा कि हमें ये सहूलतें मिलेंगी, लेकिन इससे पहले के नौकरी को संभालते, इससे पहले के खिदमत कलीसिया में करते, बारिश को देखा, इंतजार ना कर सके और वापस अपने अपने घर को लौट गए। जो आखिरी पादरी था उसको उन्होंने अंदर बुलाया और कहा कि आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो, बाकी जो पादरी है वो सब चले गए, आप क्यों नहीं गए, बारिश हो रही है, आपने कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, आप धूप में छाँव में बैठे हुए हो, इन सारी मुश्किलात का सामना किया, आप क्यों नहीं गए, क्यों आप रुके हो यहाँ पर। तो उस पादरी ने जवाब क्या दिया, उसने कहा कि जहां पर मैं खिदमत करने के लिए जा रहा हूं वहां पर मुझे भूख का, प्यास का, मुश्किल का, आंधी का, तूफान का, मुसीबत उठाने का सामना होगा, तो क्या मैं वहां पर से कलीसिया को छोड़कर भाग जाऊंगा। और जब ये बात उन पादरियों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि हम यही बात सुनना चाहते थे, हम यही सब्र, यही जज्बा, यही कुव्वत खुदा के कदम में देखना चाहते थे, ताकि हम सही फैसला कर सकें कि कौन सही आदमी है जो उस खिदमत के लिए जाएगा। इसलिए पालूस उसूल कहता है कि कोई भी बात मुझे नहीं रोकती कि तुम्हारी बाबत शुक्रगुजारी करूं। अब आपके लिए ये बात है सोचने की, जैसे पाकिस्तान में सर्दी आ रही है, देखेंगे कि बहुत से ईमानदार सर्दी के बायस कहेंगे कि आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, एतवार को चर्च में चले जाएंगे, खुदा से बातचीत कर लेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि मुसीबत है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, ये बात का सामना आप सबको होना ज़रूर है और आप इसका सामना कर भी रहे हैं। बहुत दफ़ा हम दुआ पर नहीं आते, क्यों? हमें और कोई बहुत अहम काम करना ज़रूरी है। पालूस रसूल की ख्वाहिश यही है कि उसकी ज़िंदगी से हम सबक सीखें। जिस दिन से मैंने पाकिस्तान में आने का फैसला किया है, उस दिन से मुसीबतें, परेशानियां हमारे घर में ऐसे बरस रही हैं जैसे बारिश। और मुझे पता है ये क्यों सब हो रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ। किस लिए आ रहा हूँ? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में मैं ऐशो इशरत करूँगा, नहीं, आपकी खिदमत के लिए, आपको कलाम सुनाने के लिए, आपकी तरक्की के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, आपको मसीह के बारे में बताने के लिए। इसलिए मैं आपकी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, इसलिए आप भी एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करें जैसे भी हालात में हो, एक दूसरे के लिए दुआ करें जैसे भी हालात हों। कोई भी ऐसी वजह या रुकावट आपके रास्ते में ना आए जो आपको रोके कि हम खुदा की शुक्रगुजारी या खुदा के हजूर नहीं झुकेंगे। तो उस पादरी की मिसाल इसीलिए आपके सामने बयान की है, और आप सब खादम हैं किसी ना किसी हिस्सा में, आप सबको कोई ना कोई खिदमत दी गई है कलीसिया में करने के लिए। इसलिए अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। तो आगे चलकर हम 16वीं आयत में से देखेंगे, शुक्रगुजारी से बाज नहीं आता, खुदा का शुक्र करने से वो कहता है बाज नहीं आता अपने तमाम हालातों में। सो आए हम खुदा के हजूर झुके और हम भी शुक्रगुजारी से बाज ना आए, इकट्ठे होना से बाज ना आए, क्योंकि अबलीस शेरे बब्बर की तरह फिर रहा है कि हमें फाड़ खाए, ताकि हम जिंदा खुदा की तरफ से फिर के कहें कि हम अपने घर में खुश हैं। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, जैसे पालूस रसूल कैद में, मारे जाने में, सताए जाने में, पत्थर खाने में, डंडे खाने में, कोड़े लगाए जाने में, रात दिन तूफानों का सामना करने में, खुदा खुदा इसी बात में मगन है कि तेरा मकसद है उसके लिए, इन सारे दुखों के लिए, ताकि वो हम सब के लिए आज के दिन में नमूना बन सके। इसी तरह खुदा बाप हम सबको भी कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, इस बेदीन दुनिया में, इस बेदीन मुल्क में खुदावंद तेरे लिए गवाह बन सकें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।